अस्मिता के प्रश्न और नारीवाद, पृष्ठ संख्या 49। स्त्रियों की अस्मिता का प्रश्न आज तक हाशिए पर क्यों रहा है और एकाएक पूरी दुनिया में उसकी अस्मिताओं के लिए, उनकी मुक्ति के लिए प्रश्न क्यों उठने लगे हैं? दुनिया में आज तक हाशिए पर फेंके गए अल्पसंख्यक उत्पीड़ित स्त्रियां एकाएक अपनी हाशिएकृत संसार को पहचान कर एवं तोड़कर अपने स्वत्वाधिकारों के लिए यदि जागरूक हो गए हैं, तो इससे वर्चस्ववादी व्यवस्था का केंद्रवाद, सत्तावाद आक्रमक, हिंसक और चिंतित प्रतीत होता है। ऐतिहासिक प्रक्रिया में हाशियाकृत दुनिया का जागृत होना, नए नए मुक्तकामी विमर्शों का उठना, अपनी अस्मिताओं के लिए संघर्ष करना, दबे कुचले लोगों का अपने स्वत्व के बारे में, अपनी मुक्ति के बारे में खुद सोचना, निसंदेह वर्चस्वशाली वर्गों के लिए एक नई चुनौती है। आज तक तो वह अपने वर्चस्व प्रभुत्व के द्वारा उन्हें दबाता, कुचलता, रौंदता, वाणीहीन करता आया था, लेकिन अब तक की दबी कुचली खामोश दुनिया जब अपने स्वत्वाधिकारों, अस्मिताओं के बारे में पूरी प्रखरता से सोचने विचारने लगी है, तो उसका आक्रमक, हिंसक, उत्तेजक, चिंतित होना भी लगभग स्वाभाविक ही है। अब तक उसके रहे उपनिवेश अब अपनी स्वतंत्र सत्ता, अस्मिता को चाहते हैं। यह परिवर्तन अब पूरी दुनिया के विकसित और पिछड़े हुए समाजों में भी होने लगे हैं। स्त्री विमर्शों का उभार विश्व चिंतन में नई बहसों को जन्म दे रहा है। आज तक तो पुलिंगी विमर्श का ही वर्चस्व था, इसीलिए स्त्री विमर्श के लिए कोई जगह नहीं थी, वह हो भी कैसे सकती थी। उत्तर आधुनिकता ने इन वंचितों के विमर्शों के उभार को नई स्थितियां प्रदान की है। अब प्रचलित पुलिंगी संरचनाएं और उनके अंतर विरोध खुलकर सामने आने लगे हैं और उन्हें बार बार ध्वस्त भी किया जाने लगा है। अल्पसंख्यकों, स्त्रियों और पिछड़ों, दलितों की अस्मिताएं अब तक दबी रही हैं, जिनको खोलने, समझने का श्रेय क्या स्त्रीत्ववादी विमर्श को नहीं जाता? विश्वविख्यात लेखिका सिमोन द बोवार ने स्त्री अस्मिता के प्रश्न को स्पष्ट किया है कि कैसे पितृक सत्ता ने उसको प्रतिभाहीन कहकर हीनता भाव की स्थिति में डाला है, ताकि वह यथास्थिति से बाहर निकल ही ना सके। इनवर्टेड कॉमा ओपन, हम निग्रो और एक औरत की स्थिति में गहन समानता पाते हैं। दोनों ही जातियां आज पितृ सत्ता से मुक्त हो रही हैं। पृष्ठ संख्या 50। और इनके भूतपूर्व स्वामी इन्हें इनकी पुरानी जगह में रखना चाहते हैं। दोनों ही क्षेत्रों में मालिक यथास्थिति का प्रशंसक है। वह एक अच्छे निग्रो की अपेक्षा नादान, भले, खुशमिजाज और समर्पित निग्रो को अधिक पसंद करता है। दूसरी ओर उसके लिए एक अच्छी लड़की का सद्गुण यह है कि वह चपल, चंचल, मासूम, गैर जिम्मेदार किंतु साथ ही समर्पिता भी बनी रहे। अमेरिकन गोरी चमड़ी वाले काले निग्रो को जूता पॉलिश करने के लिए सड़कों पर उतार देते हैं और उसके बाद यह निर्णय देते हैं कि काला आदमी सिवाय जूता पॉलिश करने के और कुछ नहीं कर सकता। यह एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को हीनता की स्थिति में रखा जाता है, तब वह वस्तुतः हीनता के गड्ढे में ढकेला जाता है। इस प्रक्रिया में निहित गत्यात्मकता समझी जानी चाहिए। इनवर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ है सिमोन द बोवार, पुस्तक है स्त्री उपेक्षिता, पृष्ठ संख्या 29। सवाल यहाँ यह है कि पुरुषों ने क्या स्त्रियों को निरंतर इसी हीनता भाव के गड्ढे में नहीं ढकेला है कि वे पुरुषों की तुलना में निकृष्ट हैं? सवाल यह है कि उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर मिले ही कितने हैं? जहाँ कहीं उन्हें अवसर मिले हैं, वहाँ वे पुरुषों से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हुई हैं। कृष्णा सोबती, मृणाल पांडे, किरण बेदी, नलिनी सिंह, महाश्वेता देवी क्या पुरुषों से कम प्रतिभाशाली स्त्रियां हैं? क्या वे अपनी रचनात्मक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रबंधात्मक क्षमताओं, नेतृत्व से विहीन हैं? पुरुषों ने ऐसे आरोप लगाकर उन्हें हीनता भाव से ग्रस्त रखा था। अब धीरे धीरे वे अपनी शक्ति और पांवों के नीचे की जमीन को पहचानने एवं अस्मिता के लिए संघर्ष करने लगी है। उनमें अब अपनी पराधीनता और स्वतंत्रता का बोध होने लगा है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, वह कैसे आत्मनिर्भरता को प्राप्त करे जिससे स्त्री की स्वाधीनता को सीमित करने वाली परिस्थितियों का सामना किया जा सके। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका संबंध स्त्री के अस्तित्व और उसकी स्वतंत्रता से है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ है वही पृष्ठ संख्या 31। स्त्रीत्ववादी विमर्श स्त्री के अस्तित्व, अस्मिता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है। इस शताब्दी का यह सबसे प्रखर विचारोत्तक विमर्श होने वाली अमानवीय हिंसा पितृसत्तात्मक समाज के प्रचंड अंतर्विरोधों और दमन का ही परिणाम है। पैराचेंज, स्त्री मुक्ति से जुड़े हुए प्रश्न 21वीं शताब्दी के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं। पूरे विश्व में स्त्री विमर्शों का उभार भूमंडलीय युग की देन है। यह स्वयं में एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो विकसित राष्ट्रों से विकासशील पिछड़े हुए देशों में चल रही है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, पश्चिम के समाज में स्त्री अपनी पहचान के ऐसे प्रश्नों से उलझी है जो विकसित समाजों के प्रश्न है, जबकि भारतीय स्त्री एक पिछड़े हुए समाज और अगड़े दोनों समाजों के प्रश्नों से दो चार है। यह स्थिति लेखिकाओं की स्थिति और चुनौती दोनों को नया बनाती है। वे चाहे भी तो नकल से काम नहीं चला सकती। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ है सुधीश पचौरी, पुस्तक है उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श, पृष्ठ संख्या 116। पचौरी स्त्री के प्रश्न को इस अर्थ में एक उत्तर आधुनिक प्रश्न मानते हैं। स्त्री की मुक्ति का प्रश्न, पृष्ठ संख्या 51, उत्तर आधुनिक प्रश्न है या नहीं, लेकिन एक बात पूर्णतः स्पष्ट है कि स्त्री विमर्श ने दुनिया में जिस विस्फोटक मुद्दे को उठाया है वह है पितृक वर्चस्व को तोड़ना और स्त्रियों की मुक्ति हेतु उत्पीड़न अन्याय को रोकना। स्त्री विमर्श ने यह प्रश्न उठाया है कि यदि ग्रहणकर्ता पाठक अथवा पाठिका के पास स्त्री दृष्टि, स्त्रीत्ववादी परिप्रेक्ष्य ही नहीं है अथवा परिप्रेक्ष्य ही यदि पितृसत्तात्मक है तो वहां स्त्री लेखन के प्रति कितनी संवेदनशीलता होती। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि एक स्त्री के पास भी स्त्रीत्ववादी परिप्रेक्ष्य हो, क्योंकि बहुत सी स्त्रियों ने भी पितृसत्तात्मक जीवन मूल्यों को आत्मसात किया हुआ है। वे पुरुषों की आंखों आंख से देखती, लिखती, सोचती है। यह है पितृसत्तात्मक समाज के मूल्यों का आत्मसातीकरण। परिवार की संरचना पितृक यानी स्त्री के लिए दमनकारी है। वह उसका शोषण करती है। पितृक समाज ने स्त्रियों को नियंत्रण काबू में रखने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार नियम कानून सिद्धांत बनाए। मिशेल फूको इसे ही अनुशासनात्मक नियंत्रण, डिसिप्लिन एंड पनिश में स्पष्ट करते हैं कि कैसे क्यों अनुशासन बने। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स में ऐसे प्रश्नों को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उठाया गया है कि समाज स्त्री को कैसे नियंत्रण में रखता एवं क्यों। पैराचेंज, वास्तविकता यह है कि पुरुष स्वभावतः अहंकारी है। वह अपनी सामाजिक स्थिति को सर्वोच्चता में रख कर देखता है और स्त्री को निम्न स्तर पर रख कर ही। यदि स्त्री अधिक पढ़ी लिखी, जागरूक, तर्कशील, बुद्धिमान है तो उसकी सर्वोच्चता को शायद खतरा पैदा हो जाएगा और झूठे अहंकारवाद का शिकार व्यक्ति यह सब कैसे सहन कर लेगा कि स्त्री की सामाजिक आर्थिक स्थिति उससे सर्वोच्च हायर ऑर्डर की हो जाए और उसकी निम्न या उसके बराबर। वास्तविकता यह है कि यह पितृसत्तात्मक समाज का खोखला अहंकार ही है कि स्त्री को दबाकर, कुचलकर निम्न स्थिति में रखो तथा उस पर अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक श्रेष्ठता वर्चस्व स्थापित करो। आज तक यही होता आया है और आज भी उसके भीतर यही 16वीं शताब्दी की सोच काम कर रही है कि स्त्री उसकी निजी संपत्ति है, लेकिन इस संपत्ति की गुणवत्ता को वह कतई बढ़ाना नहीं चाहता। उसे कमजोर करके रखने में ही अपनी सार्थकता, सुरक्षा समझता है। पुरुष के मन में यह भय, असुरक्षा की भावना और स्त्री को दबाकर, कुचलकर नियंत्रण में रखने की स्त्री विरोधी दृष्टि सदियों से काम कर रही है। 21वीं सदी में भी उसकी स्त्री दृष्टि, स्त्री के प्रति दृष्टिकोण इतना अनुदार, संकीर्ण, अमानवीय एवं हिंसक है, जिसने स्त्री संसार की प्रतिभा, योग्यता को कुचला हुआ है। उसे अपना उपनिवेश बनाया हुआ है, उसका वर्चस्व कायम है। पृष्ठ संख्या 52, पैराचेंज। समाज में पुरुष स्त्री की स्थिति और भूमिका को दोयम स्थिति में रखकर ही देखता है। उसके मन में स्त्रियों के प्रति यह पूर्वाग्रह बना हुआ है कि उन्हें अधिक स्वतंत्रता दे देने से जैसे वे उसके नियंत्रण में नहीं रह सकेंगी, वे स्वाधीन हो जाएंगी। इसीलिए वह उन्हें पराधीन बनाकर रखने में ही अपनी सुरक्षा समझता है। अपने से अधिक पढ़ी लिखी स्त्री, लड़की, अपने से ऊंचे या बराबर कद की लड़की के प्रति वह इतना अधिक पूर्वाग्रही होता है तो क्यों इसका अर्थ स्पष्ट है कि पुरुष हर हालत में स्त्री के बराबरी या ऊंचाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह उसे निम्न अवस्था ब्रैकेट में लोअर ऑर्डर में रखकर देखना ही उचित समझता है, ताकि उसकी सर्वोच्चता, सुपरमैसी, वर्चस्व, डोमिनेशन, हेजमनी कायम रह सके। आज भी जीवन साथी का चुनाव करते समय शिक्षित से शिक्षित समाज भी ऐसी बातों के लिए सतर्क रहता है कि कद में बराबर या ऊंची, शिक्षा योग्यता में अपने से अधिक बुद्धिमान, पद पर आसीन लड़की को उपेक्षित किया जाता है। इस सावधानी का सामाजिक मनोविज्ञान क्या है? पैराचेंज। वास्तविक अर्थों में वहां स्त्री के उत्पीड़न को महीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है। स्त्री को अन्य की तरह परिभाषित करने के पीछे भी पितृक सत्ता की दमनकारी, उत्पीड़नकारी विचारधारा काम कर रही थी कि कैसे उसको निष्क्रिय बनाकर शक्तिहीन, अस्तित्वहीन किया जा सके। एक सुखी औरत को उसकी निष्क्रियता, गतिहीनता में ही परिभाषित किया गया। ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा ओपन। क्या एक कामकाजी महिला की अपेक्षा घर में रहने वाली महिला ज्यादा सुखी नहीं? मेरे लिए अब तक सुखी शब्द का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया, न ही दूसरों के सुखों को मापने का मेरे पास कोई यंत्र है। यह तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि किस परिस्थिति को वह अपने लिए सुखी कहे। विशेषतया अनेक व्यक्ति अपनी गतिहीनता को ही सुख का नाम देते हैं। डैश व्यक्ति तभी स्वतंत्रता प्राप्त करता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को निरंतर पहचानने की चेष्टा करता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ है वही, अर्थात सुदीश पचौरी की पुस्तक उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श, पृष्ठ संख्या 31। सिमोन ने सही प्रश्न उठाया है कि पितृक समाज ने सुखी स्त्री की अवधारणा को किस प्रकार गढ़ा कि घरेलू औरतें कामकाजी औरतों की तुलना में अधिक सुखी होती हैं। इतना ही नहीं, इस शोषण तंत्र में जकड़ी हुई अधिकांश स्त्रियां अपने सुखी होने को, पीड़ित होने को भी सुखमयी अवस्था समझती है। एक निष्क्रिय व्यक्ति जैसे अपनी निष्क्रियता में ही परम सुख की अनुभूति करता है, भले ही भीतर से वह उखड़ा हुआ क्यों न हो। बहुतेरी स्त्रियां अपनी गतिहीनता, निष्क्रियता, घरेलू शोषण को ही सुख समझती है। क्या यह पितृक सत्ता की स्त्रियों को गतिहीन, निष्क्रिय बनाने की साजिश नहीं है? विडंबना तो यह है कि अपने संकीर्ण दायरे में रहकर ही अपने सुखों को तलाशती है। बहुत सी पढ़ी लिखी, शिक्षित, उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियां अमीर परिवारों में विवाहित होकर तदुपरांत संपन्नताओं से भरा हुआ निष्क्रिय जीवन जीकर पृष्ठ संख्या 53 स्वयं को परम सुखी अनुभव करती हैं, क्योंकि उन्हें उनके सुखी होने की अवधारणा ही अलग ढंग से दी गई है, ताकि वे आत्मनिर्भर होकर उसके नियंत्रण वर्चस्व से मुक्त न हो जाएं तथा चंद सुविधाओं को पाकर ही सुखी रहे, जैसे पक्षी तोता मैना को पिंजरे में कैद करके उन्हें फल चूरी आहार आदि दिया जाता है। सही प्रश्न उठाया था सिमोन ने कि अनेक व्यक्ति अपनी गतिहीनता को ही सुख का नाम देते हैं। अतः आज अनेकों स्त्रियां यदि अपनी निष्क्रियता गतिहीनता को ही सुखमय आनंदमय अवस्था समझ रही हैं, तो यह सुख नहीं है अपितु अन्य शोषित बने रहने की आत्मघाती अवस्था है। जब तक हमारा समाज अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता अधिकारों के बारे में गंभीरता पूर्वक नहीं सोचता, तब तक समाज में सच्ची स्वतंत्रता का विकास संभव ही नहीं है। हमें अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। पैराचेंज, पितृक सत्ता ने ही स्त्री उत्पीड़न की सैद्धांतिकी तैयार की है। स्त्री दमन में दमनकर्ता पितृक विचारधारा का हस्तक्षेप है, जिसे रोकने के लिए ही स्त्री विमर्श उभरा है। शायद इसीलिए स्त्री विमर्श की प्रासंगिकता बेहद बढ़ गई है, क्योंकि वह स्त्री पुरुष के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की तलाश करता है। पुलिंगी विमर्श जहां स्त्री दमन को न्यायोचित ठहराता है, स्त्री समाज पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है और इसके लिए स्त्री की कमजोर स्थिति के लिए स्त्री को ही दोषी ठहराता है, वही स्त्री विमर्श इस वर्चस्ववाद प्रभुत्वशाली पुलिंगी विमर्श में अंतर विरोधों को देखते पहचानते हुए उन्हें स्त्री विरोधी सिद्ध करता है तथा पुरुष और स्त्री के बीच आत्मीयतापूर्ण मानवीय रिश्तों की पुनर्स्थापना हेतु संघर्ष करता है। पुरुष जहां स्त्रियों पर अपना वर्चस्व प्रभुता चाहता है, वहीं स्त्रियां वर्चस्व प्रभुता नर चाहकर अपना अस्तित्व अस्मिता अलग पहचान चाहती हैं, समानता का अधिकार चाहती हैं। जब पुरुषों और स्त्रियों में समानता पूर्वक संबंध स्थापित होंगे, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण एवं विकास संभव हो सकेगा। एक ऐसा मानवीय समाज जहां कोई भी किसी के साथ बर्बरतापूर्ण अमानवीय व्यवहार नहीं करेगा। पैराचेंज, स्त्री की नियति और उसके उत्पीड़न को रोकने के लिए जितना महत्वपूर्ण क्रांतिकारी मानवीय कार्य सिमोन द बोवार ने किया, वह स्त्री अस्मिता मुक्ति के लिए दुनिया भर में पहला काम था। अपनी स्पष्टवादिता, प्रखर चिंतन, नैतिक साहस के कारण ही कृष्णा सोबती, सिमोन, तश्लीमा, फरीडन आदि ने स्त्रियों के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अपना मुख खोला। स्त्री स्वतंत्रता को लेकर अक्सर पुरुष मजाक उड़ाते हैं कि स्त्रियां अब स्वतंत्र होनी चाहती हैं, लेकिन यह उन्हें बदनाम अपमानित करने का ढंग है। स्त्री स्वतंत्रता का अर्थ है स्त्री की शोषण से मुक्ति। पृष्ठ संख्या 54, ताकि वह स्वतंत्र ढंग से जी सके, सोच सके, कर सके। उसके सामने पितृक अनुशासन की दीवारें, श्रृंखलाएं, जंजीरें न हो, वह पूर्ण स्वाधीन हो, समाज की निर्णायक शक्ति हो, अपने अस्तित्व अस्मिता के बारे में उसके स्वाधीन विचार हो, अपने स्वत्वाधिकारों के बारे में उसकी सोच स्वतंत्र हो। जाहिर है कि पितृ सत्तात्मक समाज स्वाधीन सोच रखने वाली, स्वत्वाधिकारों के प्रति जागरूक और स्पष्टवादी स्त्रियों को पसंद नहीं करता, क्योंकि ऐसी स्त्रियां उसके वर्चस्व अंतर विरोधों को तोड़ती हैं, उसकी कमजोरियां हिंसा को रोकती हैं और उनका अपना अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य होता है। पितृक समाज ऐसी स्पष्टवादिता, तर्कशीलता, स्त्रीवादी नजरिए को बिल्कुल ना पसंद करता है। इसीलिए वह सिमोन, फरीडन इरी गैरो तस्लीमा कृष्णा सोबती को उनके चिंतन को सर्वथा नापसंद करता है। समूचे स्त्रीवादी विमर्श के प्रति पितृसत्ता पुलिंगे विमर्श का लगभग ऐसा नकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। इसीलिए स्त्री विमर्श ने पुलिंगे विमर्श की बहुत तीखी आलोचना की है। तस्लीमा या सोबती का जो इतना तीखा विरोध इसलिए हुआ है या हो रहा है क्योंकि वहां पुरुष तंत्र की इतनी तीखी आलोचना हुई है जिसे सुनने का साहस फिलहाल पुरुषों में नहीं है। इसीलिए स्त्री विमर्श के प्रति उनकी स्त्री विरोधी प्रतिक्रियाएं भी साफ सुनाई पड़ रही हैं। तस्लीमा को जान से मार देने की धमकियां क्या स्त्री विमर्श के प्रति फांसीवाद मानसिकता की सूचक नहीं है? जाहिर है पिछड़े हुए असभ्य समाज में जहां स्त्रियों को पुरुषों ने सदियों से उपनिवेश बनाकर रखा हुआ है वहां स्त्री के पक्ष में बोलते हुए पितृसत्ता के विरोध बोलना कितना खतरनाक है। इसका उल्लेख हमें हाल की घटनाओं से मिलता है। दुनिया में आज तक जितनी स्त्री लेखिकाओं ने उत्पीड़ित नारी के इतिहास की करुणाजनक स्थिति नियति को उभारने की कोशिश की है उसे जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है वह भी आंखें खोल देने वाली घटनाएं हैं। सिमोन ने यह सवाल उठाया है कि क्यों स्त्री को धर्म समाज रूढ़ियां और साहित्य शाश्वत नारीत्व की मिथक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। विश्व की प्रत्येक संस्कृति में या तो स्त्री को देवी या गुलाम की स्थिति में रखा गया है। अपने इन स्थितियों को स्त्री ने सहर्ष स्वीकार किया बल्कि बहुत सी जगहों पर वह सह अपराधी भी बनी। आत्महत्या का भाव स्त्री में न केवल अपने लिए रहा बल्कि अपनी बेटी बहू या अन्य स्त्रियों के प्रति भी आत्म पीड़ा जनित द्वेष दिखाई पड़ता है। इन्वर्टेड कमापन परिणाम स्वरूप उसकी अधीनस्थता और बढ़ती गई। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता लेखिका सिमोन द बोवार पृष्ठ संख्या 52। सिमोन ने स्त्री के अन्याय की स्थिति को बहुत ही गहराई में जाकर समझा और समझाया है कि कैसे स्त्री पुरुष के बीच प्राकृतिक अंतर के होते हुए भी उनमें परस्पर सामाजिक लिंग भेद अंतर आया। इसका मुख्य कारण है पुरुष का शक्तिशाली साधन संपन्न आर्थिक प्रभुत्व जैविक शक्ति के कारण स्त्री पर अपना वर्चस्व स्थापित करना पृष्ठ संख्या 55 तथा उसे अपने अधीन बना लेना। इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया में उसकी स्थिति अधीनस्थ हुई और स्थितियों के बदलने की प्रक्रिया में ही स्त्रियां अपने इस अधीनस्थ स्थिति और वर्चस्व को तोड़कर समानता के लिए आगे आएंगी और संघर्ष करेंगी। स्त्री मुक्ति के प्रश्न और नारीवाद पृष्ठ संख्या 55 स्त्रीत्ववादी विमर्श ने ही स्त्री मुक्ति के प्रश्नों को विभिन्न कोणों से उठाया है। यही कारण है कि नारीवादी विमर्श में दैहिक प्रश्नों पर स्त्री होते हुए भी स्त्री दृष्टि से विचार किया गया है। पहली बार स्त्रियां देह और नैतिकता से जुड़े सवालों पर खुलकर सोचने लगी हैं, क्योंकि उनका सर्वाधिक उत्पीड़न देह के स्तर पर ही हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ऐसे प्रश्नों ने पितृसत्तात्मक समाज में काफी उथल पुथल बेचैनी और चिंता पैदा कर दी है। सबसे पहला प्रश्न तो यह उठा है कि क्या स्त्री की देह पुरुष की निजी मलकियत है? देह की पवित्रता मर्यादा सील नैतिकता होना स्त्री के लिए ही क्यों जरूरी है? जाहिर है पुरुष वर्चस्व के इस समाज में पुरुषों को स्त्रियों को अपने अनुशासन में रखना था ताकि वह मर्यादा में जकड़ी रहे। वह ऐसे प्रश्नों पर स्वतंत्रता पूर्वक सोच न सके और यही कारण है कि आज भी पितृक मर्यादाओं संस्कारों में ढली हुई प्रबुद्ध महिलाएं कतराती हैं, अपितु उनसे कोशों दूर रहने में ही अपनी भलाई सुरक्षा समझती हैं। स्त्री लेखन में ऐसे भयंकर अंतर विरोध आज भी यथावत रूप में बने हुए हैं। पुरुष लेखक कलाकार स्त्री को चाहे जिस रूप में भी क्यों न चित्रित वर्णित करता रहे सही है, लेकिन स्त्री लेखिका कलाकार यदि ऐसी स्वतंत्रता ले तो भारी हंगामा हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि स्त्री लेखन कलाकर्म पितृसत्तात्मक जंजीरों में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, जिसे तोड़ने का साहस इन सील और मर्यादा की आदर्श नारियों के पास नहीं है। वे ऐसे प्रश्नों से निरंतर क्यों बचे रहना चाहती? इसका अभिप्राय पूर्णतया स्पष्ट है कि वे उन पितृसत्तात्मक नियमों, अनुशासन, सिद्धांतों को तोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इससे उनके तथाकथित सामाजिक सम्मान को चोट पहुंचती है। इसीलिए सदियों से स्त्री को लज्जालु, सहनशील, समर्पणशील एवं मर्यादा में रहना सिखाया जाता है। इसीलिए चाहते हुए भी ऐसे प्रश्नों पर मुंह खोलना उन्हें कितना खतरनाक प्रतीत होता है। यह सब कुछ हमें स्त्री विमर्श पर होने वाली बहसों से पता चला है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ केवल पुरुषों के पास ही है। स्त्रियों के लिए तो इस पितृक समाज में कुछ भी कहना, लिखना, सोचना, विचारना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए स्त्री विमर्श अभी उन विस्फोटक प्रश्नों को लेकर सामने नहीं आ सका है, जिसकी आज बेहद जरूरत है। स्त्री लेखिकाएं स्वयं ऐसे विवादास्पद पृष्ठ संख्या 56 विस्फोटक प्रश्नों को लेकर संशयग्रस्त हैं। इसीलिए ऐसे प्रश्न पर पुरुष लेखकों ने पहले शुरू की कि स्त्री मुक्ति की दिशा के क्षेत्र, मुख्य मुद्दे कौन कौन से होंगे। स्त्री विमर्श ने समाज के भयंकर अंतर विरोधों को सामने रखा है कि हमारी नैतिकता लिंग केंद्रित क्यों है। राजेंद्र यादव जी ने सही मुद्दा उठाया है कि चरित्र और नैतिकता हमारे यहाँ वैसे भी दुनिया के किसी गैर कानूनी, अमानवीय, निकृष्ट और जघन्य कार्य से नहीं, लिंग प्रयोग से तय होते हैं। स्त्री व्यक्तित्व के तो बड़े से बड़े गुब्बारे को नैतिक स्खलन की छोटी सी सुई से फोड़ कर ध्वस्त किया जा सकता है। संदर्भ ग्रंथ है राजेंद्र यादव, पत्रिका हंस, सितंबर 1995, पृष्ठ संख्या 6। जिस देश के अंदर नैतिकता लिंग केंद्रित हो, वहां स्त्री के साथ कितना न्याय होगा? क्या यह समाज के दोहरे नैतिकतावादी पितृक मानदंड नहीं है, जिनके द्वारा किसी भी लड़की को उसकी औकात समझा दी जाती है? सामंती चरित्र स्त्रियों से सदैव इसी प्रकार के नैतिक चरित्र की मांग करता है। सामाजिक सम्मान उन्हें तभी मिल सकता है यदि वे पूरी निष्ठा से पैतृक यौनाचरण का अनुकरण करके अपनी पारंपरिक स्थिति को मजबूत करती है। सामंतवाद इसी प्रकार सील, ममता, मातृत्व, स्त्रीत्व को पसंद करता है। जो भी स्त्रियां यौनाचरण में स्वतंत्रता लेती हैं कि उसका उपभोग किसने करना है, उन्हें चरित्रहीन, मर्यादाहीन, संस्कारहीन, अनैतिक, अभद्र कहकर गोली मार दी जाती है, किसी तालाब में फेंक दिया जाता है या जिंदा दफना दिया जाता है। किसी भी स्त्री पर ऐसे आरोप लगाकर उसे तलाक दे दिया जाता है। सामंतवाद तो क्या, इस उत्तर आधुनिक परिदृश्य में भी नैतिकता के मापदंड दोहरे हैं। उसे पैतृक यौनाचरण के नियमों का पालन करना पड़ता है। सही कहा है राजेंद्र यादव जी ने कि स्त्री व्यक्तित्व में जिस एकमात्र जगह पर सबसे अधिक कुचड़ा, तोला और समाप्त किया गया है, वह है सेक्स। स्त्री को मर्यादा या नियंत्रण में रखने की जितनी भी तरतीबें हैं, वे सब सेक्स को लेकर ही हैं। बचपन से ही उसका इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के तरीके किए जाते रहे हैं। मुस्लिम समाज में तो खतने जैसे विधान भी है। उधर पुरुष सेक्स को बढ़ाने के नुस्खे हर दीवार और अखबार पर छाए हैं। उनका भी जोर होता है कि औरत को कैसे काबू में रखा जाए, यानी तरीका कोई भी हो, स्त्री सेक्स वह विस्फोटक तत्व है जिसे शास्त्र और शस्त्र सभी से नियंत्रित रखना है। फिर क्यों स्त्री मुक्ति की मुहिम मुख्य रूप से इसी नैतिकता के विरोध से नहीं शुरू होनी चाहिए? सही है कि स्त्री मुक्ति का अर्थ सेक्स की स्वतंत्रता नहीं है, का नारा भी सबने अधिक सीलवती सम्मानित महिलाएं ही लगाएंगी। सवाल यह है कि स्त्री देह के प्रश्न स्त्री मुक्ति से जुड़े हुए क्यों नहीं है? यदि सीलवती संस्कारशील पैतृक मर्यादाओं का निष्ठापूर्वक पालन करने वाली स्त्रियों को स्त्रियां ऐसा सोचती हैं, तो क्या यह स्त्री विमर्श का ही जबरदस्त अंतर विरोध नहीं है? इसका अर्थ पूर्णतया स्पष्ट है कि अभी भी पृष्ठ संख्या 57 स्त्रियों ने पितृ सत्तात्मक वर्चस्व को आत्मसात किया हुआ है। लिंग नैतिकता को समझने में वे असमर्थ रही है। इसीलिए ऐसे प्रश्नों पर खुलकर स्त्रीत्ववादी दृष्टिकोण से विचार नहीं हो रहा है। खुद स्त्रियां ऐसे सामाजिक नैतिक प्रश्नों पर विचार नहीं करना चाहती। जाहिर है कि इस समाज में अपनी देह की स्वतंत्रता का चुनाव स्त्री को नहीं दिया जाएगा। उसे कहां कितनी छूट देनी है, यह चुनाव भी पुरुष ही करेगा। स्त्री भी इसे जानती है कि पुरुष वर्चस्व वाले समाज में सम्मान और सुरक्षा पानी है, तो इस चुनाव की बात नहीं करनी। इसीलिए बड़ी से बड़ी प्रबुद्ध महिला को यही कहना पड़ता है, स्त्री मुक्ति का अर्थ सेक्स की स्वच्छंदता नहीं है। संदर्भ ग्रंथ सिमोन द बहुआर, स्त्री उपेक्षिता, पृष्ठ संख्या 281। यह है भारतीय प्रबुद्ध महिलाओं का मर्यादावादी संस्कारशील चिंतन, जिसमें निहित है सांस्कृतिक वर्चस्ववाद के अंतर विरोध, जिसने स्त्री की सोच को अनुकूलित किया हुआ है। पति भले ही नपुंसक, बर्बर, हिंसक हो, लेकिन उसे हर हालात में तमाम आयु उसके साथ ही जीना मरना पड़ता है। अब स्त्रियां देह के प्रश्नों पर विचारने लगी है। स्त्री समलैंगिकता के प्रश्न इसी परिप्रेक्ष्य में समझे जा सकते हैं। पैराचेंज स्त्रीत्ववादी विमर्श में अब स्त्रियां खुलकर ऐसे प्रश्नों अंतर विरोधों पर विचारने लगी हैं कि नैतिकता, पवित्रता, मर्यादा, सील, मातृत्व के मुद्दे क्या हैं और उनका स्त्री के शोषण के साथ क्या संबंध है। पितृसत्तात्मक समाजों में पुरुषों के पास स्त्रियों की देह को उपभोग उपयोग करने का पूरा अधिकार होता है। उसकी देह पर निजी मलकियत होती है। वह जब चाहे जिस भी स्त्री से अपने शारीरिक संबंध बनाए और तोड़े, वह पूरा स्वतंत्र है अपनी पत्नी को रखने या उसे तलाक देने के लिए। नैतिक पतन चरित्रहीन कहकर वह उसे त्याग देता है। उसके लिए स्त्री सिर्फ देह से आगे कुछ भी नहीं। यही धारणा हजारों वर्षों से भारतीय वर्चस्व के मूल में रही है। कोई भी स्त्री समाज में कितनी भी प्रतिभा संपन्न, उच्च पद पर आसीन क्यों न हो, लेकिन इसके साथ ही यदि वह पितृक नैतिकता का बहिष्कार करती है, तो उसको सामाजिक अपमान झेलने ही पड़ते हैं। मातृ सत्तात्मक समाजों में स्त्रियां पूरी तरह से स्वच्छंद स्वतंत्र थी। उन्हें अपने दैहिक प्रश्नों पर खुद विचार करना होता था कि उन्होंने किससे संबंध बनाने हैं और किससे नहीं। प्रेम, सेक्स, नैतिकता, मर्यादा के प्रश्न पहले इस तरह के नहीं थे, लेकिन जब पुरुषों ने मातृसत्तात्मक समाजों को पराजित करके स्त्रियों पर अपना वर्चस्व अधिकार स्थापित किया, तो उनकी देह पर भी उसकी निजी मलकियत हो गई। वह पुरुषों के तंत्र में अधीन हो गई। उसे अब पुरुष निर्मित मर्यादाओं, नैतिकताओं, अनुशासन का अनुसरण करना था। स्त्रियां इन पितृसत्तात्मक अनुशासन मर्यादा का दृढ़ता पूर्वक निर्वाह कर रही थी। जब शिक्षित लेखिकाएं स्त्री मुक्ति के प्रश्न को सेक्स स्वतंत्रता से परे देखती हैं, तो उनकी क्या पृष्ठ संख्या 58 पितृक वर्चस्व के प्रति यथास्थितिवादी समर्थनवादी दृष्टि सामने नहीं आती? अपराधीकरण का सबसे प्रचंड दबाव क्या स्त्रियां नहीं भोग रही? आज यदि खुले बाजार, उपभोक्तावाद, मीडिया ने स्त्री के देह को सार्वजनिक बनाकर उससे अपना व्यवसायिक तथा सांस्कृतिक हितों में इस्तेमाल किया है, तो पितृसत्तात्मक समाज समंतवाद चिंतित है कि स्त्री की देह का व्यापार किया जाने लगा है। उसे यह भी पसंद नहीं, क्योंकि उसकी निजी मलकियत अर्थात देह खतरे में पड़ने लगी है। जब तक स्त्रियां लेखिकाएं खुद इन प्रश्नों पर पुनर्विचार नहीं करती, अपने दैहिक प्रश्नों पर विचार नहीं करती, उसके प्रति जागरूक नहीं होती, तब तक देह के स्तर पर उनका शोषण उत्पीड़न बना रहेगा। इन प्रश्नों पर आखिर स्त्रियां क्यों मौन है? शायद पिछड़े समाज का भय है। जहां तक समाज के सांस्कृतिक पिछड़ेपन का प्रश्न है, उसे भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे तीखे प्रश्नों को उठाने वाली निर्भीक स्त्रियों पर वहां व्यक्तिगत लांछन लगते हैं। उन्हें मर्यादाहीन, संस्कारहीन, चरित्रहीन कहा जाता है कि मानो वह स्त्री लेखिका स्त्री समाज को कहां किस दिशा में ले जाना चाहती है, वह सेक्स देह के बाहर में कितनी बोल्ड है। जाहिर है कि ऐसी निर्भीक स्त्रियों का जीना हराम कर दिया जाता है। क्या कृष्णा सोबती के संबंध में पितृक आलोचक ऐसा नहीं सोचते कि वह स्त्री की क्या छवि गढ़ने में लगी हुई है? क्या तस्लीमा नसरीन इन्हीं प्रश्नों को उठाकर प्रताड़ित नहीं हुई? सोबती ने स्त्री देह के प्रश्नों को जितनी बारीकी खुलेपन से उठाया है, वह शायद ही कोई स्त्री उठा सकती हो। उसका परिणाम मृत्यु दंड, कारावास। कृष्णा सोबती ने स्त्री की देह के प्रश्नों को उठाकर अपनी नारीवादी लेखिका की एक अलग पहचान बनाई है। वहां उनके लेखन प्रश्नों को आश्चर्य, संशय और पितृक दृष्टि से देखा जाता है। बहुतेरे समीक्षक तो उन प्रश्नों को लेखिका का पर्सनल विषय तक बना डालते हैं। ऐसे प्रश्नों को स्त्रीत्ववादी विमर्श द्वारा ही पहचाना जा सकता है कि उनकी क्या सार्थकता, अर्थवत्ता अथवा प्रासंगिकता है। पितृक दृष्टि के लिए तो ऐसे मुद्दे भद्दे मजाक से भरे हुए, मर्यादाहीन, संस्कारहीन, दिशाहीन है, जो स्त्री को स्त्री नहीं रहने देंगे। जैसे इन प्रश्नों के सार्वजनिक हो जाने से स्त्रियां भटक जाएंगी। स्त्रियां भटक नहीं जाएंगी, वे जाग जाएंगी कि आखिर देह के स्तर पर भी उन्हें सर्वाधिक क्यों कुचला जा रहा है। पितृक दृष्टि के लिए ऐसे प्रश्न बेहद असुविधाजनक, आपत्तिजनक, दिशाहीन इसलिए हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में स्त्रियां भटक जाएंगी। इसमें उनकी अपनी असुरक्षा की भावना छिपी है कि वे स्त्री का दमन कैसे करेंगे, उनको अनुशासित कैसे करेंगे, वे उसे तंत्र में कैसे रखेंगे, उनकी निजी मलकियत कैसे बनी रहेंगी। इसीलिए पुरुषों के लिए ऐसे सवाल बेहद अटपटे, असुविधाजनक, आश्चर्य, संशय में डाल देने वाले, खतरनाक, मर्यादाहीन, संस्कारहीन है। पृष्ठ संख्या 59। इससे उनके वर्चस्व को चुनौती मिल रही है, अतः पुरुष उसे कैसे बर्दाश्त करेंगे कि स्त्री पुरुष वर्चस्व को चुनौती दे। इसलिए ऐसे प्रश्नों को पिछड़े हुए पितृक समाजों में करना फिलहाल चुनौतीपूर्ण तो है ही, इसकी शुरुआत तो फिर होने लगी ही है। सिमोन द बोवार ने स्त्री विमर्श में नैतिकता के इन प्रश्न पर विचार करते हुए कहा है, वह हर सिद्धांत, हर मान्यता और हर अस्तित्व को द्व्यर्थक समझती है। वह जानती है कि पुरुष की नैतिकता एवं एक पाखंड है। पुरुष चिल्ला चिल्ला कर सम्मान और सद्गुणों की व्याख्या करता है, पर गुप्त रूप से वह स्त्री को उन मान्यताओं की अवज्ञा करने की प्रेरणा देता है। यदि वह ऐसा न करे तो उसका मुखौटा खिसक जाएगा। पुरुष सहर्ष हीगेल के उस सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है जिसके अनुसार नागरिक को नैतिक प्रतिष्ठा विश्व में सर्वोपरि उठने की चेष्टा पर ही मिलती है, पर एक साधारण व्यक्ति के रूप में हर व्यक्ति की इच्छा और आनंद का अधिकार तो है ही। स्त्री के साथ पुरुष के संबंध मानव प्रासंगिक ही होते हैं। उस खास क्षेत्र में आचरण का विशेष महत्व नहीं होता। जब पुरुषों के संपर्क में आने पर पुरुष हर मान्यता को स्वीकार कर लेता है, लेकिन स्त्री के संपर्क में मानो वह अपना उत्तरदायित्व भूल जाता है। वह निम्न स्त्रीय आचरण पर उतर आता है। वह क्रूर, परपीड़क, हिंसक, अलहड़, संशयी बन जाता है। इनवर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ सिमोन द बोवार, स्त्री उपेक्षिता, पृष्ठ संख्या 281। वस्तुतः पुरुष का दृष्टिकोण स्त्री के प्रति असंवेदनशील ही रहता है। इससे उसके पितृ सत्तात्मक अंतर्विरोध जीवन के दोहरे स्टैंडर्ड्स स्पष्ट होने लगते हैं। उसके अपने लिए नैतिकता, मर्यादा, आदर्श आचरण की पवित्रता, गरिमा, उदारता का कोई अर्थ नहीं होता। सार्वजनिक मंचों, भाषणों, लेखन में वह उच्च आचरण, नैतिकता, मर्यादा एवं मूल्यों का कितना ही ढोल क्यों न पीटता रहे, लेकिन वास्तविक जीवन में वह स्त्री के प्रति घोर निम्न स्त्रीय आचरण का ही प्रमाण देता है। जब तक पुरुष के जीवन में अंतर विरोध नहीं मिटते, उनका लेखन कभी भी स्त्री के पक्ष में नहीं जा सकता। पुरुष हमेशा ही अपने बनाए हुए नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों के विरुद्ध ही काम करता है। स्त्री इसे अच्छी तरह से जानते हुए भी उसका प्रतिरोध नहीं कर पाती। पुरुष अपनी बल शक्ति, आर्थिक शक्ति से स्त्री को अनुकूलित करता आया है। वह हमेशा स्त्री से अपने वर्चस्व के समक्ष समर्पण की स्वीकृति चाहता है कि औरत उसकी हर बात, आदेश को आंखें मूंद कर स्वीकृति देती रहे। उसके आदेश को स्वीकार करने वाली चेतन, सजग स्त्री से वह जबरदस्त घृणा करता है। उसको लज्जाहीन, मर्यादाहीन कहकर वह अपमानित भी करता है। स्त्रियों के पास वह संगठनात्मक शक्ति नहीं है कि वह उसके विरुद्ध संघर्ष कर सके। वह दासता और विद्रोह की परस्पर विरोधी भावनाओं के बीच पिसती रहती है। अंत में अनिच्छा से ही वह पुरुष सत्ता मान लेती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ अरविंद जैन, पुस्तक है, लेख है उत्तराधिकार या पुत्राधिकार, पत्रिका हंस, जून 1998, पृष्ठ संख्या 77। अब पृष्ठ संख्या 60। साहित्य के समाज की स्त्री लेखिकाओं, चित्रकारों से लगभग इसी तरह की अपेक्षाएं रही है कि वे पितृक मर्यादाओं का ही अनुकरण करें। लेकिन जब से स्त्री विमर्श आया है, इसने स्त्री को सोचने, विचारने, लिखने की शैली ही नहीं दी है, बल्कि उनमें अपने स्वत्वाधिकारों के प्रति चेतना को भी विकसित किया है। उनके नजरिए को काफी हद तक बदला भी है। यही कारण है कि कविता हो या कहानी, उपन्यास हो या वैचारिक निबंध, कलाकृति उनमें उनकी तीखी आलोचनात्मक चेतना, नारीवादी सोच को साफ साफ पहचाना जा सकता है। स्त्री मुक्ति के सवालों पर जो विमर्श हो रहा है, वह स्त्री जागृति द्वारा ही संभव हुआ है। भले ही अभी तक अनेक मुद्दों को लेकर उनमें भी अंतर विरोध है, लेकिन साहित्य आलोचना, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति, दर्शन, कला आदि क्षेत्रों में स्त्रीत्ववादी विमर्श एक नई क्रांति है। स्त्री पाठ ने साहित्य अध्ययन के उन पुराने पैतृक मानदंडों को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जब एक स्त्री स्त्री होते हुए भी स्त्री दृष्टिकोण से विचारती है, तो स्त्री पाठ का जन्म होता है। एक चेतन जागरूक स्त्री जब कबीर या तुलसीदास की नारी विरोधी पितृक समर्थक दोहे चौपाई को पढ़ती है, तो उसके मन में क्या प्रतिक्रिया पैदा होती है? नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा दिन की क्या गति जो नित नारी संग का पाठ अर्थ ग्रहण एक स्त्री जागरूक स्त्री पाठिका के लिए क्या वही होगा जो यहाँ पितृक विचारधारा का संदेश है? जागरूक स्त्री कबीर के स्त्री दृष्टिकोण में निहित उन प्रचंड पितृक अंतर्विरोधों को सामने लाएगी कि एक मानवीय कवि भी स्त्री के प्रति कितना असंवेदनशील है और क्यों। वह भारतीय वर्चस्व के मूल में भी स्त्री विरोधी सामंतीय विचारधारा को समझने में देरी नहीं लगाएगी कि किस प्रकार कबीर, तुलसी जैसे मानवीय संवेदनशील कवि भी पितृसत्तात्मक वर्चस्व से मुक्त नहीं है। उनमें स्त्री के प्रति किसी न किसी रूप में असंवेदनशीलता और तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण मौजूद है। पैराचेंज। जब से स्त्री विमर्श सामने आया है, तभी से भारतीय वर्चस्ववाद के मूल में छिपी स्त्री विरोधी मानसिकता, अंतर विरोधों का स्पष्ट ज्ञान हमें मिलना शुरू हुआ है कि कैसे स्त्री विरोध का अभियान सदियों से चलता आया है। पैराजेंस, स्त्री विमर्श पितृसत्ता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है, क्योंकि वर्चस्ववाद के विरोध में ही इसका जन्म विकास हो रहा है। आज तक स्त्री ने पितृक वर्चस्व को आत्मसात किया हुआ था, वह उस प्रभुत्व द्वारा अनुकूलित नियंत्रित थी। स्त्री विमर्श ने ही स्त्रियों के भीतर यह चेतना पैदा की कि उनको वाणीहीन स्वत्वहीन क्यों किया जा रहा है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व क्यों नहीं है, परिवार का अनुशासन उन्हें ही क्यों अनुशासित करता रहा है, परिवार स्त्री का खुला दमन क्यों करते हैं, स्त्रियां आर्थिक धरातल पर आत्मनिर्भर होकर भी परिवार में दबी कुचली क्यों है, क्या आर्थिक स्वतंत्रता ने उन्हें मानसिक तौर पर स्वतंत्र बनाया है। पृष्ठ संख्या 61। स्त्री विमर्श में ऐसे असंख्य प्रश्न हैं जिनमें स्त्री मुक्ति का संदेश छिपा है। अब स्त्री लेखिकाएं अपने अस्तित्व अस्मिता के बारे में सोचने लगी हैं, अपने शरीर पर अंकित असंख्य बेड़ियों के निशानों घाव को भी वे पहचानने लगी हैं। जब गुलाम में अपनी बेड़ियों का एहसास पैदा हो जाता है तो वह अपनी बेड़ियां काट लेता है। ठीक यही बात स्त्री पर भी लागू होती है कि जिस दिन स्त्रियां अपनी गुलामी की असंख्य अदृश्य बेड़ियों जंजीरों को पहचान लेंगी तो वह दिन भी दूर नहीं जब वे पितृक जकड़बंदी से मुक्त होकर अपने अधिकार के बारे में सोचेंगी। पैराजेंस, स्त्रियों का संपत्ति पूंजे के स्वामित्व से वंचित रहना ही उसकी अधीनस्थ अन्या होने का मुख्य कारण है। भला जो व्यक्ति आर्थिक धरातल पर कमजोर है वह क्या समाज में कोई सामाजिक प्रतिष्ठा रखता है। इन्वर्टेड कॉमा पर, दरअसल उत्तराधिकार संबंधी सारे कानून की जड़ों में पुरुष वर्चस्ववादी पुरानी परंपरा अभी भी गहरे में बैठी है। परिवार और पूंजी का संपूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण मर्दों के हाथ में होने के कारण समाज और राजसत्ता के सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति न के बराबर है। निर्णय लेने के प्राय सभी मुख्य केंद्रों पर मर्दों का स्वाधिकार सुरक्षित है, जिसकी वजह से स्त्री के हिस्से में सिर्फ एक अंधेरा कोना ही बचा रह जाएगा। संदर्भ ग्रंथ वही पृष्ठ संख्या 77। पितृसत्ता समाज में पूंजी का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है। पूंजी उत्तराधिकार पर पुत्राधिकार ने स्त्री के सामाजिक स्थिति को बेहद अप्रासंगिक ही बना दिया है कि क्या संपत्ति का स्वामित्व पूर्ण नियंत्रण पुरुष के हाथ में रहने से स्त्री के लिए कोई जगह बचती है। स्त्री के पास धन नहीं होता कि वह अपने छीनते अधिकारों को पाने के लिए कानून की मदद ले सके। स्त्री संघर्ष करे, कानून भी उन्हीं को सुरक्षा प्रदान करता है जिनके पास धन पूंजी है। कानून की शरण में जाने के लिए पूंजी धन चाहिए, लेकिन वंचितों स्त्रियों के पास धन नहीं होता कि वे अमानवीय संसार के विरुद्ध कोई कानूनी लड़ाई लड़ सके तथा अपने अधिकारों को सामाजिक स्थिति को बेहतर बना सके। स्त्रियों में कहीं स्वत्वाधिकारों की चेतना विकसित न हो सके, वे अपने अस्तित्व के लिए जूझ न सके, उन्हें आर्थिक दृष्टि से शक्तिहीन किया जाता है। पुरुष का आर्थिकता पर पूरा नियंत्रण है, इसीलिए वह शक्ति संपन्न वर्ग है और स्त्री शक्तिहीन असहाय अभिशप्त। कानून विशेषज्ञ अरविंद जैन जी का कहना सही है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, जब तक पूंजी पर पुत्राधिकार बना रहेगा तब तक नारी मुक्ति समानाधिकार न्याय स्वतंत्रता सम्मान पहचान या गरिमा का सपना साकार होना असंभव है। संदर्भ ग्रंथ परिवार निजी संपत्ति राज्य की उत्पत्ति, लेखक है एंगल्स, पृष्ठ संख्या 67-68। क्या पुरुष इतनी आसानी से स्त्रियों को समानाधिकार दे देगा, वह क्यों चाहेगा, खतरा मोल लेगा कि पूंजी संपत्ति पर उसका स्वामित्व वर्चस्व टूटे और स्त्रियां पुरुषों के बराबर आकर खड़ी हो जाए। वह अपना आर्थिक सांस्कृतिक प्रभुत्व क्यों छोड़ेगा? क्या यह उसके हित में है? आज भी स्त्री मुक्ति, समानता, समान अधिकार की बातें महज राजनीतिक नारे हैं। प्रश्न संख्या 62, जिनका वास्तविक जीवन से कोई दूर का भी संबंध नहीं है। पूंजी पर पुत्राधिकार, उत्तराधिकार ही स्त्री मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी अभेद्य काली दीवार है, जिसे तोड़कर ही स्त्री न्याय, समानता, समानाधिकार, स्वत्वाधिकार संभव हो सकेंगे। पैराचिन, दरअसल पितृसत्ताक वर्चस्व के स्थापित हो जाने से पुरुषों ने जो सबसे पहला काम किया वह था संपत्ति, पूंजी का उत्तराधिकारी अपने पुत्रों को बनाना। लड़कियों को संपत्ति में से बराबर का हिस्सा तो दूर, उन्हें मामूली सा भी हिस्सा न देना। इस प्रकार पुरुष की संपत्ति के उत्तराधिकारी उसके पितृक वंश के पुत्र हो गए। एंगल्स ने स्पष्ट किया है कि इन्वर्टेड कॉमा पर जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती चली गई, वैसे वैसे इसके कारण एक और परिवार के अंदर नारी की तुलना में पुरुष का दर्जा ज्यादा महत्वपूर्ण होता गया। दूसरी ओर पुरुष के मन में यह इच्छा जोर पकड़ती गई कि अपनी मजबूत हो गई स्थिति का लाभ उठाकर उत्तराधिकार की पुरानी प्रथा को उलट दिया जाए, ताकि उसके अपने बच्चे हकदार हो सके। परंतु जब तक मातृ अधिकार के अनुसार वंश चल रहा था, तब तक ऐसा करना असंभव था। इसीलिए आवश्यक था कि मातृ अधिकार को उलट दिया जाए, और ऐसा किया भी गया। इस प्रकार मातृक वंशानुक्रम तथा मातृक उत्तराधिकार स्थापित हुआ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ सिमोन, स्त्रीयोपेक्षिता, पृष्ठ संख्या 27। इस प्रकार पैतृक उत्तराधिकार की प्रथा से मातृक उत्तराधिकार की पराजय समूची स्त्री जाति की ऐतिहासिक पराजय बन गई। घर के अंदर पुरुष ने स्त्री पर अपना वर्चस्व आधिपत्य जमा लिया। यहीं से शुरू होती है स्त्री के उत्पीड़न दमन की कहानी। क्या यही स्थिति आज भी नहीं बनी हुई है? जब कोई बच्चा गोद लेना चाहता है तो वह भी पुत्र ही होता है, ऐसा क्यों? इसका अर्थ स्पष्ट है कि पुरुष की यही प्रबल कामना इच्छा रही है कि उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र ही हो, जो उसका दाह संस्कार करे, पिंडदान, श्राद्ध आदि कराए, उसे मरणोपरांत भी खाद्य सामग्री पहुंचाए। पुरुषों का दृष्टिकोण स्त्रियों को स्वतंत्रता अधिकार दे देने से जैसे वे उसके तंत्र से मुक्त हो जाएंगी। स्त्री की नियति को निर्धारित करने वाली दूसरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्तियां हैं। पुरुष चाहे स्त्री पर हिंसा करे और चाहे प्रशंसा, दोनों में उसका दृष्टिकोण छद्म ही है। कानून भी स्त्रियों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाया है। सिमोन ने सही कहा है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यदि कानून औरत को बराबरी का अधिकार दे भी दे तो सामाजिकता, नैतिकता और लोक व्यवहार उसके आड़े आ जाते हैं। दूसरी बातों के समान रहने पर भी आर्थिक क्षेत्र में औरत और मर्द बिल्कुल अलग अलग जाति के रूप में प्रस्तुत होते हैं। पुरुष को अच्छी नौकरी, बेहतर तनख्वाह और सफलता की ज्यादा सुविधाएं मिलती है। उद्योग व्यवस्था और राजनीति में पुरुषों को ज्यादा ओहदे मिलते हैं और महत्वपूर्ण पद पर उनका एकाधिकार भी रहता है। डैश, पुरुष के मन में, पृष्ठ संख्या 63, इस जगत के प्रति कोई संदेह नहीं, उसकी स्थिति असुरक्षित नहीं। यह औरत की ही स्थिति है जो अपना विश्लेषण मांगती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता सिमोन, पृष्ठ संख्या 325। वस्तुतः स्त्री की स्थिति अन्याय ही है। उसे अब तक जो शिक्षा, सामाजिक संस्कार प्राप्त हुए हैं, उसमें स्त्री बुरी तरह से जकड़ी हुई है। उसके समक्ष कितना भी क्रांतिकारी, परिवर्तनकामी, स्त्री के हक में संघर्ष करने वाला साहित्य क्यों न रख दिया जाए, वह अपनी पारंपरिक स्थिति से मुक्त नहीं होना चाहती। उन्हें ऐसा साहित्य बेहद खतरनाक प्रतीत होता है। ऐसे साहित्य विचारों से सहमति रखते हुए भी वे व्यवहारिक धरातल पर उससे दूर रहना चाहती हैं। औरतें अपने बारे में, अपनी अस्मिता के बारे में क्यों नहीं सोच रही? यदि सोच भी रही हैं, तो उनकी वह सोच कैसी है? क्या वह सोच स्त्री मुक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध होगी? औरतों के हित में यही है कि वे अपनी परंपरागत स्थिति को बदले। पुरुषों द्वारा थोपे गए विचार को ही अपना कर चलना स्त्री अपना कर्तव्य समझती है। वह अपने भावों, विचारों, आकांक्षाओं, तर्कों से नहीं सोचती। उसकी सोच का दायरा पितृक मर्यादाओं में ढला और सिकुड़ा हुआ है। इसीलिए स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक अपने बारे में सोच ही नहीं पाती। उनके पास सोचने को बहुत कुछ है, लेकिन उसके सामने लक्ष्मण रेखाएं भी हैं, जिनको लांघने का खतरा वे मोल नहीं लेना चाहती। इन्वर्टेड कॉमा पर, पुरुष प्रधान वातावरण में परवरिश होने के कारण वह अब यह महसूस करती है कि प्रत्येक बात में पुरुष को ही पहल करनी चाहिए। अपने अधिकारों का दावा, उन पर दृढ़ रहने की चाह और दूसरी ओर पुरुष के लिए अधिकारों का त्याग तथा विलयन की चाह के बीच बटी हुई एक औरत निरंतर तनाव झेलती है और टुकड़ा टुकड़ा जीती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता सिमोन, पृष्ठ संख्या 325। अंततः समझौतों की नियति से वे भीतर से चूर चूर अस्तित्वहीन जीवन जीने को अभिशप्त है। यह स्थिति निम्न मध्य वर्गीय स्त्री से लेकर उच्च मध्य वर्गीय स्त्री की ही है। अभी भी स्त्री अभिशप्त और संतप्त है, उत्पीड़ित एवं वंचित। समाप्त।